नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में दो दिन के दौरे पर ओमान पहुंचे। जॉर्डन और इथियोपिया की सफल यात्राओं के बाद प्रधानमंत्री ओमान की राजधानी मस्कत पहुंचे हैं। मस्कत हवाई अड्डे पर रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री सैयद शिहाब बिन तारिक अल शहीद ने श्री मोदी का स्वागत किया। उन्होंने भारत ओमान रक्षा सहयोग को मजबूत करने और रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए उप प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। मस्कत में भारतीय समुदाय के सदस्यों ने उनका स्वागत कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों से किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री की यह यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान की मौजूदगी में एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। मस्कत में ओमान इंडिया बिजनेस डायलॉग में श्री गोयल ने कहा कि समझौते के बाद दोनों देशों के विकास में एक नया अध्याय जुड़ेगा।
Values, traditions, the rich...
भारत और ओमान के बीच साझा मूल्य, परंपराएं और समृद्ध संस्कृति ही हमें कल के इस बेहद यादगार और महत्वपूर्ण दिन तक एक साथ लाने में सहायक रही हैं। कैस और मुझे 17 साल के लंबे अंतराल के बाद ओमान द्वारा किसी देश के साथ पहले मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने का सौभाग्य प्राप्त होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और इथियोपिया एक परिवार के सदस्य हैं और अधिक न्यायपूर्ण, समानतापूर्ण और शांतिपूर्ण विश्व के लिए मिलकर काम करेंगे। इथियोपिया की संसद के संयुक्त सत्र में श्री मोदी ने कहा कि ग्लोबल साउथ देशों की आवाज बनने के लिए भारत और इथियोपिया को एकजुट होना चाहिए।
द ग्लोबल साउथ इज राइटिंग इट्स ओन डेस्टिनी एंड इंडिया एंड इथियोपिया शेयर अ विजन फॉर इट। Our vision is of a world where the global south rises not against anyone but for everyone.
इसके साथ ही प्रधानमंत्री की अफ्रीकी देश इथियोपिया की दो दिन की सफल यात्रा आज संपन्न हो गई। यह यात्रा परिणामों के लिहाज से बेहद सफल और अभूतपूर्व रही। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय सदियों पुराने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक सहयोग के स्तर तक ले जाना था। श्री मोदी को प्रधानमंत्री आबी अहमद अली ने इथियोपिया के सर्वोच्च पुरस्कार द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया। लोकसभा ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 पर चर्चा शुरू हुई। यह कानून 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह लेगा। विधेयक के अंतर्गत हर वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिनों के मजदूरी की कानूनी गारंटी का प्रस्ताव है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रसार भारती ने सांस्कृतिक पहुंच को बढ़ावा देने और कार्यक्रमों के माध्यम से आय अर्जित करने के साथ साथ अपने सार्वजनिक सेवा दायित्व को पूरा करने के लिए कंटेंट सिंडिकेशन नीति 2025 का मसौदा तैयार किया है। लोकसभा में लिखित उत्तर में डॉ मुरुगन ने कहा कि इसमें प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध डिजिटल फर्स्ट कंटेंट को भी ध्यान में रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि पिछले एक दशक में देश ने हर क्षेत्र में विकास किया है। नई दिल्ली में श्रीमती सीतारमन ने कहा कि देश ने वित्तीय समावेशन, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने आम नागरिकों के निर्धारित प्रीमियम पर न्यूनतम बुनियादी बीमा सुनिश्चित किया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा कोई भी दस्तावेज प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय से गायब नहीं मिला है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश के आरोपों का जवाब देते हुए श्री शेखावत ने कहा कि नेहरू पेपर्स 2008 में यूपीए सरकार के समय निकाले गए थे। लखनऊ में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा 2020 क्रिकेट मुकाबला कोहरे के कारण रद्द हो गया। पांच मैचों की 2020 श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। पांचवा और आखिरी मुकाबला शुक्रवार को अहमदाबाद में होगा। मौसम विभाग ने कल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा कि अगले दो दिनों तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।